पिछले बार हमने ये जाना कि धर्म क्या होता है, फिर रिलीजन क्या होता है। नॉर्मली हम ऐसा समझते हैं जो व्यक्ति पूजा पाठ हवन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल होते हैं। मतलब और सिंपल भाषा में कहें, आम लोगों में धर्म रिलीजन मतलब पूजा पाठ हवन कीर्तन फेथ बिलीव स्पिरिचुअलिटी ये सब एक ही चीज लोग मानते हैं। और इसीलिए हमने पहले ये डिस्कशन किया कि धर्म क्या चीज है। बेसिकली ये देखिए, वो हमारा व्यवहार आचरण कंडक्ट जो बिहेवियर है, जब वो संसार के नेचर के लॉज के अकॉर्डिंग चले, हिसाब से चले, वो धर्म होता है। अब वो तीन लेयर पर होता है, कॉस्मिक लेयर पर, ब्रह्मांड के लेयर पर, जो कॉस्मिक ऑर्डर्स हैं, द नेचुरल लॉज हैं, प्रकृति के जो नियम है, व्यवस्था है, जो कॉस्मिक सिस्टम है, वो धर्म है। सोशल लेवल पर जो सोशल ऑर्डर है, जिसको मेंटेन करने के लिए जो लॉज रूल्स रेगुलेशन जो जस्टिस सिस्टम है, वो धर्म है। और इंडिविजुअल लेवल पर जो एथिकल बिहेवियर जो एथिकल वैल्यूज है, ड्यूटीज है ना, जो सच बोलना, दया करना, क्षमा करना, हिंसा ना करना, जिसको आप ह्यूमैनिटी कहते हैं ना, ये सब इंडिविजुअल लेवल पर धर्म होता है। और रिलीजन बहुत अलग तरह की चीज है, जो बेसिकली बिलीव्स और जो हमारी आस्था है, मैं ऐसा मानता हूं, मैं मतलब ए ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर वे में कुछ चीज को मानते हैं, बिलीव करते हैं और पूजा करते हैं। दूसरी चीज है बेसिकली वो रिलीजन जो है वो कहानियां माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल स्टोरीज पर बेस्ड होता है, जिसमें पूजा प्रार्थना इस तरह की चीजें इन्वॉल्व रहते हैं, मिरेकल की बड़ी सारी चमत्कार की बड़ी सारी संभावनाएं बनी रहती है, इसको हम रिलीजन कहते हैं। ये हमने पिछले दो बार हमने दो अलग अलग दिनों में जाना। स्पिरिचुअलिटी क्या है संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि वो तो अलग टॉपिक है। आज हमारा जो समझना है, क्या जो रिलीजियस है पूजा पाठ हवन कीर्तन भजन करते हैं, या जो मोरली बहुत राइट है, क्या ये बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं? तो स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है? कोई भी अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी है, हिंदी में या अपनी भारतीय भाषा में हम आध्यात्मिकता अध्यात्म कहते हैं। आध्यात्मिकता अध्यात्म में आत्मा शब्द है, तो जो भी आत्मा से रिलेटेड है वो सब अध्यात्म है, आध्यात्मिकता। अंग्रेजी में एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू स्पिरिट, स्पिरिट अगेन वही सोल, तो उसी के अनुवाद है स्पिरिचुअलिटी। फर्क बेसिकली यही होता है कि रिलीजियन नॉर्मली एक्सटर्नल चीजों पर ज्यादा जोर देता है, एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस पर जोर देता है। आप कितने बार जप तप करते हो, तपस भजन कीर्तन करते हो, माला जपते हो, कपड़े कैसे पहनते हो, इन सब चीजों पर रिलीजन का फोकस रहता है। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली विद इन होता है, इंटरनल होता है, इनसाइड होता है। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप आध्यात्मिक हो कि नहीं हो, आपके कपड़े क्या है, कपड़े से जो जज करते हैं वो आपको जज करेंगे, आपके हाव भाव से कोई जज करते हैं वो जज करेंगे, कितने बार माला जपते हो उससे जज करेंगे, जज करेंगे। पर वो रिलीजियस चीजें होती हैं, और स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता प्योरली इंटरनल होता है। तो जो कुछ अंदर के लेवल पर हमारा होता है, जो कुछ काम हम करते हैं जो आत्मा से रिलेटेड हो, जो हमारे माइंड पर इफेक्ट डालता है और माइंड को क्लियर क्लींस करने में, साफ करने में, पवित्र करने में हेल्प करता है। और वो पवित्र मन जिस जब अंदर की ओर आत्मा को खोजने में हेल्प करता है, वो सब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। और अंदर की ओर जाने की क्या जरूरत है, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, सेंस क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर मनुष्य सुख ढूंढता है, खुशी ढूंढता है। तो खुशी हम बाहरी दुनिया में भी ढूंढते हैं, पैसा कमाते हैं, इसीलिए घर बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, पावर पोस्ट इसके पीछे पड़ते हैं कि इसे खुशी मिले, है ना। जितनी ज्यादा इनमें से चीजें होंगी तो उससे खुशी मिलेगी। पर स्मार्ट लोग, जो समझदार लोग, वो देखते हैं कि इन चीजों को कितना भी इकट्ठा करो, खुशी तो मिलती है, पर एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है, फिर उसके बाद दोबारा आपको ढूंढना पड़ता है और कुछ उसमें परमानेंट सल्यूशन नहीं होता है। मैं शुरू में जब सोचा कि मैं गरीब हूं तो पैसा आ जाएगा तो मैं खुश रहूंगा, मैंने खूब पैसा कमाया, देखा कि खुशी तो आई पर वो आधी अधूरी, 10% भी नहीं, आती है चली जाती है। फिर सोचा शायद, और पैसे से मैंने घर लिया, अच्छे घर लिया, अच्छे गाड़ी लिया, अच्छे खान पान किया, वर्ल्ड टूर किया, सब किया, खुशी भी मिली, पर उस उतने देर तक जितना देर तक एंजॉय करो, फिर भूल गए। नई गाड़ी ली, 2 4 6 महीने तक मजा आया, फिर दोबारा परेशानी, फिर नई जलेसी, नई चीजें। फिर मैंने सोचा पावर पर मजा आता है, तो मैंने कोशिश किया कि जहां पावर मिले उसको अक्वायर करूं, है ना, सत्ता हासिल हासिल, वो देश का प्रेसिडेंट बनूं या अपने घर का मुखिया बन जाऊं, जहां मेरी चले, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं भी हो, तो मुझे पावर चाहिए, पोस्ट चाहिए, उससे भी खुशी मिली, भाई ईगो सेटिस्फाई होता है, पर वो भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, फिर भी फंस जाता हूं। तो ग्लैमर होता है, लोकेशन जिसको कहते हैं, आपके इसमें भी ज्यादा मजा नहीं है। फिर आप कहते हैं कुछ ऐसा करो कि लोग मेरी तारीफ करें, ऐसा भी किया, फिल्म इंडस्ट्री में लोग जाते हैं, करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, दीवाने होते हैं, तब भी वहां फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। तो जो स्मार्ट लोग हुए, जो समझदार लोग हुए, उनको लगा ये खुशियां बड़ी टेम्पररी है, मुझे ऐसी कोई खुशी ढूंढनी है जो परमानेंट हो, जो इटर्नल हो, जो अब्सोल्यूट हो। और जो वो जो अब्सोल्यूट खुशी है, जो परम आनंद जिसको हमारे यहां परमानंद कहते हैं, वो परमानंद को ढूंढने की जो यात्रा है, जो जर्निंग है, उस जर्निंग का नाम स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, क्योंकि वो परमानंद आत्मा को जानने पर ही मिलता है, सोल को जानने पर ही मिलता है। इसीलिए क्योंकि आत्मा की ओर जाने की जरूरत है, आत्मा को समझने की जरूरत है, तभी वो आनंद मिलेगा। तो जो कोई एक्टिविटीज आत्मा को जानने के लिए होवे, वो सब आध्यात्मिक है। तो अंग्रेजी में जो कुछ एक्टिविटीज आपकी सोल को जानने के लिए है, वो सब स्पिरिचुअलिटी है। तो खोज तो आनंद की है, मतलब हम इतने बेवकूफ नहीं है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दें, भाई हमें गोल हमारा है, पक्का है। और जो साधु सन्यासी ज्ञानी जो होते हैं, हमारे लिए लगता है कि कोई स्टूपिड है, गधे हैं, पता नहीं दुनियादारी छोड़ के जंगल में बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या खाते पीना छोड़ दिया, देखो हम तो स्मार्ट हैं, ज्यादातर लोग समझते हैं हमारे कारण दुनिया तरक्की कर रहा है, ये बाबाओं का क्या रखा है। भाई इतने बेवकूफ वो नहीं है ना, तो उनको पता है कि उनको क्या खुशी मिलती है, क्या मजा मिलता है। आपकी अपनी मजा है, उनकी अपनी मजा, आप गुड़ में खुश हो, आप चीनी में खुश हो, वो रसमलाई में खुश है, तो आपकी गुड़ आपके मुबारक, उनके रसमलाई उनको मुबारक है। तो कोई किसी को समझ नहीं पाता है, जब तक आपको रसमलाई ना मिले तब तक आप जी चीनी खाते रहोगे, मिठास के मजा लेते रहोगे, और जिसको रसमलाई मिल गया वो कहेगा ये चीनी खाने वाले बेकार हैं। तो वो कॉन्स्टेंट एक दूसरे को छोटा देखने की, ये तो हर चीज में चलता रहता है, किसी भी शराबी को पूछो, शराब पीने वाले को, उसकी नजर में जो शराब नहीं पीते सबके सब गधे हैं, बेवकूफ हैं, लाइफ को एंजॉय करना नहीं जानते हैं, है ना। आज जो शराब नहीं पीते उनको पूछो, कहेंगे शराबी सारे मूर्ख हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, खुश की खुशी और भी मिल सकती है। तो हर एक दूसरे को ब्लेम करने का तो चलता है जो जिस फील्ड में है। तो जो सांसारिक चीजों में फंसा हुआ है उसको लगता है जो सन्यासी है, जो मैं ऑनेस्ट सन्यासी की बात कर रहा हूँ, ये जो कपड़े पहनकर आ जाते हैं इधर, मैं जो रियल सन्यासी हैं, त्यागी हैं, वो सब बेवकूफ हैं। सन्यासियों को भी लगता है ये सारे बेचारे मंद बुद्धि हैं, कम बुद्धि वाले हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे खुशी की खोज है, जिसको जहां जिस खुशी में मजा आ गया वो वहीं टिक गया। तो उस खुशी को पाने के लिए जरूरी है कि हम उस आत्मा को जाने, और जब हम उस आत्मा को रियलाइज करते हैं, सेल्फ को रियलाइज करते हैं, तो फिर हम वो जो साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ है, जन्म और मृत्यु का जो जो साइकिल है, जो बेसिक सोर्स है हमारे डर का, और डरी है जो हमें जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करने नहीं देता है, उससे छुटकारा पाते हैं। और जो टेक्निक, जो तरीका, जो रास्ता हमें अपने आप को रियलाइज करने में हेल्प करता है, और अपने आप को रियलाइज क्यों करें, क्योंकि वो परमानंद तभी मिलेगा, वो एब्सोल्यूट खुशी तभी मिलेगी, उस रास्ते को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो अर्थात स्पिरिचुअलिटी, कोई हेल्प करें कि ये कह रहे हैं वॉल्यूम बहुत लो है, कोई है यहाँ ऑडियो सिस्टम में? तो जूम वालों का आता है कि वॉल्यूम बहुत लो है, उनको सुनाई कम देता है। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी है आत्मा को जानने के लिए जो जर्निंग है, यात्रा है, उसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिससे हम परमानंद को पा सकें। ओके, तो अब आवाज क्लियर है, आ गई है। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब स्पिरिचुअलिटी का गोल आपको समझ में आया, एब्सोल्यूट खुशी, परमानंद को पाना, और वो क्या चीज है कि अब ठीक आ रहा है। हाँ, वो है कि आत्मा को जानने की जो प्रोसेस है वो स्पिरिचुअलिटी है। तो उसकी पर्पस अलग है, गोल अलग है, उसकी मॉडलिटी अलग है। अब हम देखते हैं कि धर्म का, क्योंकि हम तीनों को जोड़ के चलेंगे, क्योंकि नॉर्मली लोगों के लिए धर्म, रिलीजियन मतलब जो आस्था, और स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता, तीनों को ज्यादातर लोग एक ही समझते हैं। तो हम तीनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या कनेक्ट सिमिलैरिटीज है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्या इनमें कनेक्शन है, क्या क्या संबंध है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि पहले धर्म और स्पिरिचुअलिटी में क्या समानताएं हैं या क्या कनेक्टिविटी है। धर्म हमने जाना जो व्यवहार की चीजें हैं, आपकी जो अच्छे व्यवहार है, जो दया, क्षमा, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, ऑनेस्ट होना, जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, वो धर्म से रिलेटेड है। तो उसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लेन देन है। आध्यात्मिकता का अगर कोई कहे कि मैं स्पिरिचुअल हूं, या कोई स्पिरिचुअल है, या स्पिरिचुअल जर्निंग पर है, अर्थात आध्यात्मिक साधना कर रहा है, उसका जो फाउंडेशन है, जो जो नींव है जिस पर घर टिकता है, वो है एथिकल बिहेवियर। आपका हमारा व्यवहार, वो मेंटल हो, फिजिकल हो, या ओरल हो, वो मैक्सिमम मोरालिटी से भरा हुआ हो, वैल्यूज से भरा हुआ हो, वो उसकी फाउंडेशन होता है। बिना एथिकल फ्रेमवर्क के, एथिकल जब मैं कहता हूं क्या मतलब है, ऑनेस्ट होना, है ना, चोरी ना करना, क्षमा करना, दया करना, मतलब कंपैशन, फॉरगिवनेस, जो आपने धर्म के लक्षण में पढ़ा। और अगर कुछ नहीं पता, योग में पतंजलि ने जो यमन नियम के रूप में 10 चीजें दिया, इन्हीं को ही देख लीजिए, यही सब मोरालिटी है, एथिकल चीजें हैं। इसके बिना कोई भी स्पिरिचुअल जर्निंग स्टार्ट करना भी इंपॉसिबल है। अब मैं सरल भाषा में बोलूं, कोई भी व्यक्ति लाइफ में अगर मोरालिटी की प्रैक्टिस नहीं करता तो सपना भी मत देखें कि आप कोई आध्यात्मिक रास्ते में जा सकते हो, स्पिरिचुअल बन सकते हो। मोरालिटी बेसिक है, द बेड रॉक है, जो फाउंडेशन है, जिसके बेस पर ही आपकी स्पिरिचुअल जर्निंग हो सकता है। और एथिकल वैल्यूज, ये तो अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में कहेंगे नैतिकता, और संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। अर्थात धर्म और आध्यात्मिकता एक चीज नहीं है, बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। पर धर्म नींव होता है, फाउंडेशन होता है, जिसके बेस पर स्पिरिचुअलिटी का बिल्डिंग ऊंचा रखा जा सकता है। सीधी भाषा में कहें, अगर आप धर्म का अभ्यास नहीं करते, आप सच नहीं बोलते, आप ऑनेस्ट नहीं है, आप अस्तेय का पालन नहीं करते, आपके अंदर क्षमा देने की भावना, वो एबिलिटी नहीं है, आप धैर्य पेशेंस की प्रैक्टिस नहीं करते, आप विद्या अध्ययन पढ़ाई लिखाई नहीं करते, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, अपनी बुद्धि को डेवलप नहीं करते, ऐसे जो भी चीजें, ये सब चीजें अगर नहीं करते तो आप बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने की सोचना भी मत। अगर किसी को लगे वो स्पिरिचुअल है, फिर वापस ले जाओ, अभी आप स्पिरिचुअलिटी के कहीं दरवाजे पर भी नहीं हो, उस तरफ जाने के वाली गाड़ी में भी नहीं बैठे हो, तो पहुंचना तो दूर की बात है। और जब हम इस धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, अब मैं एथिकल चीजें नहीं बोलूंगा, एथिकल बिहेवियर, क्योंकि उसकी सिंपल भाषा है धर्म। तो जिसको आप एथिक्स से, मोरालिटी से, वैल्यू से, जो कुछ भी आप बोलते हो, ह्यूमैनिटी से, यूनिवर्सल वैल्यू जो हम यूज करते हैं, बड़े मोटे मोटे शब्द यूज करते हैं, हमारे यहां इसके लिए सिंपल शब्द हुआ धर्म। तो धर्म जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी को बनाता है, आप उसके लिए योग्य है कि नहीं, आप वर्थी है कि नहीं आध्यात्मिक रास्ते में जाने के लिए, तो धर्म ही, धर्म से ही डिसाइडेड होता है। तो जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, धर्म में कंफ्यूजन हो, एथिक्स को, मोरालिटी को पालन करता है, और वो क्या है, फर्स्ट प्रवचन में हमने डिस्कशन किया, मनु ने लिखा धृति, क्षमा, दम, इंद्रिय निग्रह आदि आदि, अस्तेय, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध, गुस्सा ना करना, पतंजलि के ये यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणय, जो भी हर ऋषि हर आचार्य अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषाओं में अपने तरह से डिस्क्राइब करते हैं। कोई इसका नाम मोरालिटी नहीं दिया। पतंजलि कहते हैं यम नियम, मनु कहते हैं धर्म, व्यास कहते हैं षट संपत्ति, ना? तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, पर भाव वही है। तो जो व्यक्ति इनको पालन करता है और ऑनेस्टली एथिक्स को पालता है, मेंटली भी, ओरली भी, और प्रैक्टिकली, फिजिकली भी पालन करता है, तो होता क्या है, इवेंचुअली उसका मन, माइंड जो है वो क्लीन होता है, प्यूरिफाइड होता है, और उसके अंदर वैराग्य, जिन चीजों, जो चीजें अननेसेसरी हैं, पर हम अननेसेसरीली उन चीजों के साथ अटैच्ड हैं, ऐसे चीजों से अपने आप को हटाता है। हमारे घर में आप देखेंगे सैकड़ों चीज होगा जिसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर होती है तो कभी 2 साल में, 5 साल में, सोचते हैं कि 10 साल के बाद यूज होगा, पर घर में हमने भर रखे हैं, स्टोर जाते हैं खरीदने के लिए,
जो अच्छा लगा ले लेते हैं और घर में उसको डम करते रहते, कभी यूज होगा होता ही नहीं कभी। कभी गलती से 10 साल में एक बार यूज हो गया, लगता है अच्छा पैसा वसूल हो गया। ये जो आदत है ह्यूमन बींग की कि अगर मेरे में एबिलिटी है मैं कुछ भी इकट्ठा करूं, उनसे दूर रहना, सोचना जो जो नीड जिसकी जरूरत नहीं, हटाओ 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 हटाओ। फिजिकली नहीं, मेंटली। मेंटली हटेगा, फिजिकली तो अपने आप बहुत सारे हट जाएंगे। कभी कभी हम चीजों को फिजिकली हटा देते हैं पर मेंटली सोचते रहते हैं। आपके बच्चे जब बाहर चले जाते हैं, मतलब दूसरे शहरों में रहने जाते हैं, दूसरे शहरों में पढ़ाई करते हैं, दूसरे शहरों में जॉब करते हैं, आपसे कभी साल में 2-4 बार मिलने आते हैं या एक बार मिलने आते हैं, 2 बार मिलने आते हैं, इसका अर्थ थोड़ी है कि आपसे वो दूर चले गए, वो फिजिकली दूर चले गए। मेंटली तो आप 24 घंटे अभी भी जपते रहते हो उन्हीं के बारे में। तो वैराग्य ये नहीं है कि आप फिजिकली क्या छोड़ते हो, वैराग्य है कि मेंटली किन चीजों को आप डिसअसोसिएट करते हो। जब मेंटली आप डिसअसोसिएट करते हो, फिजिकली साथ में हो तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, दूर है तो भी अच्छा, पास हो तो भी अच्छा। तो धर्म से विवेक और वैराग्य का सिद्धि होती है। विवेक क्या सही है क्या गलत है ये जान के उसके बेस पर आप सही चीजों को करते हैं, जिसके लिए आप एथिक्स वैल्यूज या मोरालिटी कहते हैं। वैराग्य सांसारिक छोटी मोटी चीजों के प्रति आप अपने आप को हटाते रहते हैं, क्योंकि आपका गोल बहुत लंबा है, आपकी गोल बहुत बड़ा है और उस गोल के लिए आप करते रहते हैं। तो ये तो हुआ धर्म का क्या रिलेशनशिप है स्पिरिचुअलिटी में। तो क्या रिलेशनशिप हुआ कि धर्म, अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है, आध्यात्मिकता की ओर जाना है, तो सबसे पहले धर्म की प्रैक्टिस करो। और आपको लगेगा कि शायद ये मेरी अपनी बातें होंगी, तो कुछ शास्त्रों की कोट करते हैं। पहले ऋग्वेद का एक मंत्र है, सप्तमर्यादा कवयस्ततक च्युतासाम इदम् एका मभ्यंगुरोगात आयोरहस्कंभ उपमस्य नीडे पथाम विसर्गे धरुणे सुतस्थौ। जो विजनरी लोग हैं जिनको हम ऋषि कहते हैं, उन लोगों ने 7 ऐसे प्रॉपर कंडक्ट मर्यादा, सप्त मर्यादा का उल्लेख किया, मेंशन किया, जिसको ब्रीच करने पर, तोड़ने पर व्यक्ति गिर जाता है, और जिसको ठीक ठीक प्रैक्टिस करने पर वो इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी सुपीरियर स्टेज को प्राप्त करता है, ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। इसी तरह मनुस्मृति कहता है, तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस करम परम तपसा किल विषम हंति विद्या मृतम अश्नुते। ये जो ऋग्वेद में 7 मर्यादा, ये मर्यादा का क्या भाव होता है, वही जिसको हम धर्म कहते हैं, वही जो मोरालिटी है, जो वैल्यूज है। मतलब झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना अमर्यादा है, सच बोलना मर्यादा है। अब वाल्मीकि रामायण में राम को क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों? आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, एक एक सिंगल इंसिडेंट, राम की क्या, राम क्या बोलते हैं, कैसे क्या क्या काम करते हैं, क्या सोचते हैं, हर वो सिंगल थिंग आप देखेंगे बिल्कुल उस एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर होता है। गलती से भी उनसे ऐसा कुछ नहीं होता है जिसको आप कहोगे कि नहीं ये वाला गलत है। तभी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना गया। मर्यादा मतलब वो जो लिमिटेशन है, जो जो प्रॉपर कंडक्ट है, उसको वो कभी क्रश नहीं करते। उसी को हम धर्म कहते हैं, पतंजलि यम और नियम कहते हैं। तो मनुस्मृति कहता है, तपो और विद्या ये दोनों के द्वारा ही व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। तप मतलब ऑस्टेरिटी, मतलब धर्म का प्रैक्टिस करना, शरीर मन और बुद्धि को क्लीन करने में, प्यूरिफाई करने में जो जो एक्टिविटीज होते हैं उसको धर्म तप कहते हैं। तो तपस्या के द्वारा पाप नष्ट होता है, धर्माचरण करने से आपसे पाप होगा नहीं,
और विद्या अगर आप और जो रियलाइजेशन करते हैं, चीजों को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, उससे आप सेल्फ रियलाइज जब होते हैं तो अमृत को मोक्ष को पाते हैं। कठोपनिषद थोड़ी बड़ी कड़वी भाषा यूज करता है, बहुत कठोर भाषा। कठोर भाषा इसीलिए कि क्योंकि देखिए मॉडर्न एज में आजकल हम इतने ज्यादा हिपोक्रेट हो चुके हैं। जो लेस हिपोक्रेट होता है ना, बड़े इंटरेस्ट ध्यान से सुनिएगा, जो लेस हिपोक्रेट होता है उसको हम महान मानते हैं, क्योंकि हिपोक्रेट लेस लोग अब रेयर होते जा रहे हैं। मतलब पाखंड इतना ज्यादा हमारे खून में जम गया है कि हम कम पाखंडी को अच्छा इंसान मानते लग गए। इसीलिए सही बातें चुभने लायक होता है। हो सकता है 2000 साल 3000 साल पहले ये बड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज होता, पर आज ये हार्ड लैंग्वेज लगेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो पाखंड में भरते हैं। तो कठोपनिषद कहता है यस्त्व विज्ञानवान भवत्यमनस्क सदा शुचि न सप्तत् पदम आपनोति संसारम चाधिगच्छति। जो व्यक्ति वाइज नहीं है, ये विजडम कंडीशन है, ये लग्जरी नहीं है, विजडम बुद्धि है ना, ये बेसिक्स होते हैं। तो गवर्नमेंट जैसे फिक्स करते हैं ना, ये बेसिक चीजें हैं, इस पर टैक्स फ्री करो, ये लग्जरी वाला है, इस पर टैक्स लगाओ। ज्यादातर लोगों को लगता है बुद्धि सिर्फ पढ़े लिखे बड़े लोगों की चाहिए। नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं बुद्धि और विद्या ये बेसिक्स होए, इसको लग्जरी में काउंट मत करो, नरक जाओगे। पढ़ने लिखने को लग्जरी मत समझना, सही चीजों को जानना लग्जरी मत समझना, अपनी विवेक को, इंटेलेक्ट को, बुद्धि को ठीक ठीक प्रयोग करने को लग्जरी मत समझना। ये दोनों फाउंडेशन है, बेसिक्स के रूप में लेना, जैसे सरकारी भाषा में रोटी कपड़ा मकान के रूप में लेना इनको। बुद्धि और विद्या, पढ़ना शास्त्रों को ठीक ठीक समझ पढ़ना, जिससे कि समझ पाओ जिंदगी दुनिया क्या है, और बुद्धि को तेज करना जिससे कि सही गलत में डिस्क्रिमिनेशन कर पाओ। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि ठीक नहीं हुई है, जिसका मन चंचल है, अभी भी फ्लक्चुएट करता है माइंड, अशुचि, जिसका माइंड अभी भी इम्प्योर, इम्प्योर क्या चीज होता है, मतलब जेलेसी है, गुस्सा है, असूया है, लालच है, जो भी जिनके अंदर है, वो कभी भी उस स्पिरिचुअल रास्ते में जा ही नहीं सकते, वो बार बार इस सांसारिक चीजों में वापस आते जाएंगे। तो फिर कौन जा सकते? ये जितने शब्द बोला उसमें से अ हटा दिया, बोले ना अविद्या अ हटा दो तो विद्या, अज्ञान अ हटा दो तो ज्ञान। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि। जो व्यक्ति विज्ञानवान बुद्धिमान होता है, विवेक होता है, जिसकी डिस्क्रिमिनेटिव पावर अच्छा हो गया है, सही गलत को, अच्छा बुरा को ठीक ठीक समझ पाता है, समनस्क जिस जो माइंडफुल हो गया है, माइंड जिसके प्रॉपरली कंट्रोल्ड हो चुके हैं, सदा शुचि जिसका बिहेवियर वो फिजिकल हो, मेंटल है या ओरल हो, वो प्योर हो चुका है, और ऐसा ही व्यक्ति अपने लक्ष्य गोल, जो सुप्रीम गोल परमात्मा को पा सकता है और पुनर्जन्म नहीं पाता है। इसी कठोपनिषद का नाविरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने न मे प्रज्ञाने नहीं न माप्नुयात। आप कोई कहे कि देखो कितना सुबह रोज 5 बजे उठता है जी, 4 बजे उठता है, बड़े लोग प्राउडली बोलते हैं कि 4 बजे उठता है, नहा धो के पूजा पाठ हवन भजन कीर्तन संध्या उपासना करता है, शाम को करता है, दोपहर को करता है, बहुत करता है, खाना पीना बिल्कुल सलाड ही खाता है, वेगन है ना, सब बढ़िया है, माला जपता है, 1 लाख। आप कहोगे वाह कितना बड़ा स्पिरिचुअल है। कठोपनिषद कहता है बकवास, ये सब चीजें ये रखो अपनी पॉकेट में, चटनी बनाओगे क्या करोगे? नाविरतो दुश्चरितात् दिसका चरित्र खराब चरित्र सुधरा नहीं है। खराब चरित्र समझते हैं, जिसकी व्यवहार अच्छा नहीं हुआ है, सच्चाई निर्लोभता आदि आदि, नाशांत जिसका मन शांत नहीं रहता है, पीसफुल नहीं है, असमाहित जिसका मन कंट्रोल में नहीं रहता है, वो कुछ भी कर ले, जो एंजाइटी में भरा रहता है, जिसके अंदर अभी भी स्ट्रेस रहता है, तो कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा मतलब कुछ होगा, मतलब सोसाइटी में पाखंड कर सकते हो, लोग वाहवाही करेंगे, कहेंगे देखो बड़ा धार्मिक है, बड़ा आध्यात्मिक है, हो सकता है पूजना भी शुरू कर दे, वो ठीक है, तुम्हें मटेरियल बेनिफिट खूब मिलेगा, हर चीज में मिलता है जी, लोग रेत बेच के भी पैसा कमाते हैं, तुम धर्म रिलीजियस बन के, ये सब रिलीजियन बन जाएगा। तो ये जो ध्यान देने की बात है कि धर्म के बिना स्पिरिचुअलिटी की क्या हालत होती है, कठोपनिषद का ये पहले अध्याय का दूसरा मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन में धर्म नहीं हुआ तो स्पिरिचुअलिटी किसी काम का नहीं बनता, उल्टा हम ज्यादा पाखंडी और सेल्फ प्रोक्लेम्ड बनते जाते हैं। तो फिर वो धर्म क्या है जिसकी बात हम करते हैं? मनु ने कहा धृति क्षमा वाला, धैर्य पालन करना, पेशेंस रखना सीखो, माफ करने की प्रैक्टिस करो, सेल्फ कंट्रोल करो, ऑनेस्टी की प्रैक्टिस करो, माइंड को क्लीन करो, बॉडी फिजिकल मेंटल और जो आपके एटमॉस्फेयर क्लीनिनेस रखो, और इंद्रिय निग्रह सेंसेस को कंट्रोल करना सीखो, धी इंटेलेक्ट को डेवलप करो, विद्या सीखो, जानो कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, इनके लिए शास्त्रों को पढ़ो समझो, जानने की कोशिश करो, सच्चाई को लाइफ का पार्ट बनाओ, लाइफ का एक अंश अंग बनाओ, और अक्रोध गुस्से पर कंट्रोल पाओ। ऐसा नहीं कि इतने ही है, इसी तरह पतंजलि यम नियम के रूप में देखते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आदि, और अलग अलग ऋषि मुनि शास्त्र इसी चीज को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपकी काफी क्लैरिटी आ गई होगी, धर्म कितनी जरूरी है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बनने के लिए, जिसके बिना आप अध्यात्म के सपना भी मत देखना, अगर देखोगे तो वेस्टिंग ऑफ टाइम है। मतलब देखना मतलब कोई सरकारी रूल नहीं है कि आपको कोई फांसी चढ़ा देगा, पनिशमेंट कर लेगा, भाई क्यों सपना देखा, क्यों क्यों आध्यात्मिक रास्ते पर जा रहे हो, आओ तुम्हें दंड, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस एक ही वेस्टिंग ऑफ टाइम है, कुछ नहीं होने वाला, उस जप का 0 रिजल्ट होगा, उस तपस्या का 0 रिजल्ट होगा, उस हवन का, उस पूजा पाठ का 0 रिजल्ट होगा, अगर धर्म की प्रैक्टिस नहीं। पर क्या धार्मिक बन जाना ही स्पिरिचुअल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, धर्म तो बेसिक है, स्पिरिचुअल तो उसके आगे जो करने की जरूरत है। अब हम आते हैं स्पिरिचुअलिटी का रिलीजियन के साथ क्या संबंध है, वो देख लेते हैं थोड़ा। जो रिलीजियन या आस्था या विश्वास, जिसमें दो चीजें बेसिकली होती है, बिलीफ एंड वर्शिप, आस्था और पूजा। पूजा के अलग अलग वेरिएशन है, पूजा में प्रार्थना प्रेयर भी आता है, भजन भी आता है, कीर्तन भी आता है, जप भी आता है, हवन भी आता है, ये सब पार्ट ऑफ पूजा आते हैं। और बिलीफ, भाई मेरे लिए यही भगवान है ना, मेरे लिए ये भगवान है, ये पेड़ भगवान है, ये आदमी भगवान है, ये बिलीव है, रिलीजन में यही चलता है, और जिसके लिए सर्टन रूल्स है, यू हैव टू फॉलो इट, अगर फॉलो नहीं किया तो कल कहेंगे आप मुसलमान नहीं रहे, आप क्रिश्चियन नहीं रहे, आप हिंदू नहीं रहे, आप बौद्ध नहीं रहे, आप ये नहीं रहे, आप जैन नहीं रहे, आप नहीं रहे, सर्टन रूल्स यू हैव टू फॉलो इट। और वो जो रूल्स है ये किसने बनाया, अब बनाया किसी ने भी हो, किसी व्यक्ति ने बनाया या ग्रुप ने बनाया हो, पर एक ग्रुप ऑफ पीपल उसको फॉलो करते हैं। वो जो बिलीफ है वो आपकी अकेली होगी तो रिलीजन नहीं बनता, जब बहुत सारे लोग एक ही टाइप के बिलीफ को मानते हैं, एक ही टाइप का बिलीफ सिस्टम हो, एक ही टाइप की पूजा पद्धति करते हो, वो मिलके रिलीजन कहलाता है। पर स्पिरिचुअलिटी तो प्योरली इंटरनल होता है, जिसका अर्थ ही सोल या आत्मा से रिलेटेड होता है। और रिलीजियस बनने के लिए आस्थावान या सोकल्ड, जो आजकल जिसको हम धार्मिक कहते हैं, जो मॉडर्न धार्मिक या रिलीजियन रिलीजियस बनने के लिए आपको फिक्स्ड कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो मोस्टली एक्सटर्नल हैं, उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और उसी से आपका बिलीफ सिस्टम जो होता है वो एक स्ट्रक्चर लेता है। पिक्चर दिखाते हैं इसीलिए कि हर रिलीजन का एक पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव वे ऑफ लाइफ है, कपड़े, खान पान, बिलीफ, पूजा पद्धति अलग अलग हैं, और आपको उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में ही रह के काम करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत इधर उधर माइंड चेंज ठीक है, नहीं तो फिर आगे मुश्किल हो जाता है। पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ज्यादातर पूजा पाठ और विश्वास, मतलब जिसको हम रिलीजियस कहते हैं, रिलीजियस लोगों को ये गलत फहमी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ या बिलीव करता है तो वो अपने आप को स्पिरिचुअल समझने लग जाता है। हम सब ये इसी में आते हैं, हम सबके सब, इवन अपने आर्य समाज में भी हम देखते हैं जो रोज हवन करता है वो अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल समझने लग जाता है, संध्या करने लगे तो स्पिरिचुअल समझने लग जाता है, किसी भी फील्ड में जो जप करता है तो उसको लगता है मैं स्पिरिचुअल बन गया। ये गलत फहमी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। पूजा पाठ भजन कीर्तन तप ये सब चीजों से कोई स्पिरिचुअल नहीं बनता। क्या ये बेकार है? नहीं, इनकी अपनी यूज है, एक कम्युनल सेंस बनता है कि भाई मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, और एक मिस क्या कहेंगे, एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो ये मैं भगवान को पूजता हूं। लोग तो रिलीजन के नाम पर टेररिज्म भी फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, उन्होंने लगता है वो रिलीजन है, उससे वो भगवान को खुश कर रहे हैं। कुछ सटन पूजा पाठ भवन कीर्तन भजन करने से वो भगवान को खुश करते हैं, या उनको लगता है कि उनका एक गॉड से, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है, ये एक मिसपरसेप्शन है। और ये मिसपरसेप्शन जितना जल्दी उन लोगों का टूटे वो सही रास्ते पर उतने जल्दी आ जाएंगे, नहीं तो पूरी जिंदगी पता नहीं कहां बिता दिया, और जन्म होने के बाद पता चला भाई ये तो एक दिन भी पूजा पाठ नहीं किया, ये भी मरने के बाद वहीं पहुंच गया जहां मैं पहुंच गया। भाई तुझे तो मैंने पिछले जन्म में इतनी गालियां दी कि तू नास्तिक है, तू भगवान को नहीं मानता, तू ये नहीं करता, तू भी यहीं आ गया भाई, मैं तो यहीं भी जहां मैं आया। चलिए, तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में आपको फर्क समझ में आया, रिलीजन एक्सटर्नल चीज है। हाँ, ऐसा नहीं कि रिलीजन कोई बेकार चीज है, उनकी अपनी यूज है। अपनी यूज क्या है? रिलीजियस चीजें एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, हवन करते हैं, हवन में जब आते हैं इसी बहाने आप डे टू डे लाइफ से अपने आप को अलग करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप भक्ति भाव से रहते हैं, मन को भगवान के प्रति लगाते हैं, या भगवान से रिलेटेड चीजें सुनते हैं, वेद शास्त्रों को सुन, हर रिलीजन का जो भी है, ये आपके लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है जिससे कि आप स्पिरिट चाहो, अगर चाहो कंडीशन, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जा सकते हो। पर इकोसिस्टम क्रिएट हो जाने से, इंटरनल या एक्सटर्नल, आप स्पिरिचुअल नहीं बन पाते हो। उसके लिए आपको चाहना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आजकल होता है, उसके साथ पूरा करेंगे, वह है मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी। आप कह सकते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा की स्पिरिचुअलिटी। वो क्या चीज है? वो रिलीजियन का बिल्कुल एक्सट्रीम साइड है। यहां पर जाने से पहले एक दो चीजें आपको बताते हैं। आपको पता है यूरोप में और अमेरिका में, यूएसए में, करीब करीब 35% लोग जो ऑफिशियली अनाउंस करते हैं, उसके लिए एक टर्म है, मुझे वो टर्म याद नहीं, बट जिसका मीनिंग है कि स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। और एक टर्म है कि रिलीजियस स्पिरिचुअल बट नॉट अलाइड विथ एनी चर्च। हम ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं रखते, संबंध नहीं रखते, पर हम स्पिरिचुअल हैं। यूरोप में, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, और जो थर्ड वर्ल्ड के लोग होते हैं, जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को हमेशा भगवान की तरह मानते हैं, उस देश में भी ये काफी जोर से स्प्रेड हो रहा है, इंक्लूडिंग भारत में। तो बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने आप को अब स्पिरिचुअल बोलता है, खास करके ये जो इंटेलेक्चुअल टाइप के प्राणी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपने आप को स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस के रूप में आइडेंटिफाई करने में बड़ा कूल समझते हैं। इट्स ए कूल थिंग, है ना, कि भाई अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे। ये जो स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस, ये आपको कहाँ मिलेंगे पता है? इस तरह के एनिमल्स, मतलब प्राणी, मतलब एनिमल से बुरा मत समझे, ह्यूमन बींग एज एंड ऑफ द डे सोशल एनिमल, है ना। ये मत सोचिए कि आप एनिमल क्यों कहते हो, भाई मैं भी एनिमल हूँ, सोशल एनिमल है। ये जो इंटेलेक्चुअल एनिमल्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल एनिमल्स, ये आपको मेडिटेशन के कैंप में मिलेंगे है ना, ज्यादातर। क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूं, अरे भाई मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया आप, राम जी पूजा पाठ ही पुंगापंथी चीजें हैं, हवन कीर्तन ये सब बकवास चीजें हैं। हम थोड़े हाई क्लास के लोग हैं, है ना, इंटेलेक्चुअली थोड़े एडवांस लोग हैं। धर्म का तो कोई दूर दूर का रिश्ता भी नहीं है, बोला अच्छा व्यवहार करो, शांत रहो, दयावान बनो, क्षमावान बनो, ये तो ना रिलीजियस या मॉडर्न स्पिरिचुअल। देखिए दोनों में एक कॉमन चीज है, जो रिलीजियस है या जो अल्ट्रा मॉडर्न स्पिरिचुअल है, दोनों में एक कॉमन चीज क्या है? दोनों ही धर्म को पीछे रख देते हैं, स्टोर रूम में, गराज में रख देते हैं, कोई लेन देन नहीं। दोनों एक्सट्रीम लेवल पर हैं, एक पूजा पाठ को ही सब कुछ समझता, एक मेडिटेशन को और भगवान और आत्मा को सब कुछ समझता। ये जो एक्सक्लूसिवनेस है कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, वेदांता, बड़ा हिंदुओं में बड़े पढ़े लिखे लोगों की आप देखेंगे बड़े कूल में बोलेंगे वेदांता, है ना, वेदांता जैसा नहीं कि मानो भाई कोई कोई मॉडर्न, है ना, वो कोई वो हो गया। ये आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भारत में जो बड़े बड़े शहरों के जो एलिट सोसाइटी है, वहाँ आपको वैसे वो वेदांता ऐसा शब्द मिलेगा मानो जैसे आजकल भारत में हायर मिडिल क्लास फैमिली में फ्रेंच बोली जाती है, अब अंग्रेजी नहीं बोलते, पता है ना? नहीं, ये पता होनी चाहिए। अब भारत में मोस्ट ऑफ जो पढ़े लिखे जो पैसे वाले लोगों के घर में बच्चे, 20-25 साल पहले वो घरों में, माँ बाप घर में बैठ के डाइनिंग टेबल पर अंग्रेजी में बात करते थे। पर अब हुआ क्या, ड्राइवर का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में जाता है ना, तो घर में जो मेड है उसकी बच्चे भी अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, वो भी अंग्रेजी बोलता है। अब हमारी रिट्रोकोशी कहाँ रही, एलिटनेस। अब मोस्ट ऑफ बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों, मतलब इंडिया में पब्लिक स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूलों में
इंग्लिश मीडियम तो पढ़ाई होती है, फ्रेंच बड़ा पॉपुलर हो रहा है, फ्रेंच जर्मनी ऐसे। अब माँ बाप बच्चे बैठ के फ्रेंच में बात करते हैं। अरे कुछ तो डिस्क्रिमिनेशन हो ये यार, ड्राइवर के साथ बैठे अंग्रेजी बोलेंगे, हम बड़े लोग हैं। जैसे फ्रेंच एक मॉडर्न नए इंडियन सोसाइटी में फ्रेंच बोलना, जर्मनी बोलना, आपको लग रहा होगा नहीं ये बहुत भाषा सीख रहे, नहीं वो भाषा सीखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जस्ट टू शो दैट कि हम एलिट हैं, इनके बराबर नहीं है। ये अंग्रेजी सीख गए तो अंग्रेजी अब कमन लोगों की भाषा हो गई, हिंदी बोलते थे तो अब अंग्रेजी बोलते थे। इसी तरह वेदांता भी बड़ा कूल चीज होता गया। अब धीरे धीरे योगा भी बन गया है काफी हद तक। और योगा भी अब ये बाबा रामदेव आए, ये आए, इतना पॉपुलराइज किया, उसकी एलिटनेस खत्म हो गया। उसमें अब क्रिस्पी नहीं, क्रिस्पीपन नहीं है। नहीं तो 20-15-20 साल पहले सब बड़े बड़े लोग बोलते थे योगा करता हूं मैं, योगा टीचर है। अब क्या करते हैं, योगा तो घर तक पहुंच गया जी, मेड का बच्चा भी योगा करता है। अब मेडिटेशन स्पिरिचुअल हो जी। तो ना मेडिटेशन बिकम द कूलनेस, अब हम स्पिरिचुअल हो गए, हम सीधे परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ हमारा संबंध हो गया। और या दूसरी कैटेगरी, ये जो वेदांता वाले आर्गुमेंट लॉजिक बहस करना, आत्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है, तो इसी को स्पिरिचुअलिटी समझने लग गए। एट द एंड ऑफ द डे वो रिलीजियस हो या जे सो कॉल्ड अल्ट्रा मॉडर्न, पिक्चर में भी आप देख पाएंगे ये लोग जो आजकल मेडिटेशन योगा स्टूडियो में जिस तरह की इनकी भीड़ होती है, और जो अपने आप को स्पिरिचुअल के नाम से बुलवाते हैं, है ना, ये दोनों ही, क्योंकि जो बेसिक चीजें इनमें कम है वो है कि धर्म मिसिंग है, एथिक्स पर इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, वैल्यूज पर, मोरलिटीज पर नहीं दिया जाता, इसीलिए दोनों जगह स्पिरिचुअलिटी से दूर जाते हैं। कंक्लूडन करेंगे, हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में दोनों का इंपोर्टेंस होता था, मैटेरियल लाइफ को भी रखना है, स्पिरिचुअल लाइफ को भी रखना है, रिलीजियस प्रैक्टिस की भी अपनी यूज है, धर्म का अपना यूज है, और दोनों के बेस पर हम स्पिरिचुअलिटी की यात्रा कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। इसीलिए आप देखेंगे मोस्ट ऑफ हमारे प्राचीन कहानियों में, वो रामायण महाभारत की हो, पुराणों की हो, या कोई भी जो कहानियों का लिटरेचर है, उसमें आम लोगों के लिए त्रिवर्ग का कंसेप्ट होता है। त्रिवर्ग समझते हैं, धर्म अर्थ काम, मोक्ष की बात नहीं होती है। हर व्यक्ति को धन पैसा कमाना, खर्चना, एंजॉय करना चाहिए, अर्थ काम सेंसुअल प्लेजर को भी फुलफिल करो, धर्म, और इसको करते हुए धर्म का पालन करो, धर्म। मोक्ष सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं मतलब सबके इंटरेस्ट नहीं होता, जिनको मोक्ष के इंटरेस्ट हो वो फिर उनकी तरीका अलग होता है उनकी फिर, पर धर्म जरूरी है। आप मैटेरियल लाइफ में जियो तो भी धर्म को साधो, आप स्पिरिचुअल लाइफ में वो धर्म को साधो, जिसको कणाद की भाषा में अभ्युदय निःश्रेयसो सिद्धि, तुम्हारे डे टू डे लाइफ के खुशी में भी धर्म होना चाहिए, तुम्हारे परमानंद निश्रेयस एब्सोल्यूट खुशी पाने में भी धर्म होना चाहिए, तो फिर जाकर के आप इसको साधते हो। ईशोपनिषद की भाषा में विद्याम चा विद्याम च यस्तद् वेदो भयम् सह अविद्यया मृत्युम् तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मैटेरियल वर्ल्ड को भी साधता है, मैटेरियल लाइफ में आपका धन संपत्ति कामनाएं इच्छाएं ये सब पर धार्मिक मोरल वे में एथिकल बिहेवियर के साथ जब आप साधते हैं तो आप इस जीवन में भी खुश होते हैं, अगले जीवन में भी खुश होते हैं। कंक्लूजन है, आप रिलीजियस बने बिना स्पिरिचुअल बन सकते हैं। यू कैन बी अ स्पिरिचुअल पर्सन विदाउट बीइंग ए रिलीजियस पर्सन, बट यू कैन नॉट बी ए स्पिरिचुअल पर्सन रिलीजियस, सॉरी, यू कैन नॉट बी ए स्पिरिचुअल पर्सन विदाउट बीइंग धार्मिक। इसी तरह आप रिलीजियस बिना बने स्पिरिचुअल बन सकते हैं, आप स्पिरिचुअल बने बिना रिलीजियस भी बन सकते हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग है। यू कैन बी ए रिलीजियस पर्सन विदाउट बीइंग स्पिरिचुअल पर्सन। करोड़ों लोग हैं रिलीजियस है, चर्च गोइंग है, मस्जिद गोइंग है, मंदिर जाने वाले, सब करने वाले, पूजा पाठ खुद करने वाले, इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की ढेला भी नहीं मिलेगा। पर जो जो मैसेज लेने लायक, आप स्पिरिचुअल कतई नहीं हो सकते हैं अगर धार्मिकता आपके लाइफ में नहीं है। धर्म और स्पिरिचुअलिटी इंटरकनेक्टेड है। तो धर्म, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, ये तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है, अलग अलग और एक साथ, पर डिस्कशन किया। हो सकता है आपको कुछ अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।